जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे, जय श्री गौरांग श्री गौरांग जय श्री गौरांग, प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, उमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के हमारे गोवर्धन इको विलेज के रविवार सत्संग कार्यक्रम में सबका स्वागत है। तो आज का विषय है महात्मा कौन है, उस विषय में चर्चा करने वाले हम। तो ये चर्चा जो है भगवद गीता के ऊपर आधारित चर्चा होगी। तो भगवद गीता क्या बताती है हमें, महात्मा कौन है, तो वो हम जानेंगे। तो भगवद गीता का अध्याय 9 से श्लोक क्रमांक 13 में इसका वर्णन आता है कि महात्मा कौन है। तो श्लोक इस प्रकार से है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो ये श्लोक है। तो इसमें बताया गया है कि इसका भाषांतर इस प्रकार से है, हे पार्थ, कृष्ण बोल रहे अर्जुन को, हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से इसका भाषांतर दिया गया। मैं एक बार वापस पढ़ता हूं। हे पार्थ, कृष्ण बोल रहे अर्जुन को, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये इसका भाषांतर है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा तात्पर्य देते हैं, वो तात्पर्य भी हम सुनेंगे। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। तो ये लक्षण है, पहला लक्षण क्या बोला है, महात्मा जो है वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। तो उसी को हम महात्मा बोलेंगे, किसी भी व्यक्ति को हम महात्मा नहीं बोलेंगे। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। तो यहां पे बताया कि जो भगवान कृष्ण की शरण लेता है क्या होता है, वो इस भौतिक संसार से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। तो बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति उनकी शरण लेता है, माम एवये प्रपद्यन्ते, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कोई दूसरा कोई बोल नहीं सकता कि आप मेरी शरण आओ और मैं आपको सभी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा या इस भौतिक संसार से मुक्त कर दूंगा। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त है वही व्यक्ति कह सकता है कि माम एवये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, और इस भौतिक संसार से एक ही व्यक्ति जो है वो मुक्त है, वो है कृष्ण भगवान। बाकी सभी देवी देवता जो है इस ब्रह्मांड का सब नियोजन कर रहे, वो है ना, वो इस ब्रह्मांड के अंदर है, वो हमें इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं कर सकते। केवल कृष्ण भगवान ही हमें भौतिक संसार से मुक्त कर सकते हैं, और वही ऐसा बोल सकते हैं, बाकी देवी देवता ऐसा बोल नहीं सकते वो। तो इसलिए वहां पे बताया गया कि जो भगवान की शरण लेता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है, जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। सबको आवाज आ रही सुनाई? वही मूलभूत सूत्र है, तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति माश्रता। तो जो दैवी भगवान की बहुत सारी प्रकृतियां हैं तो इसमें एक प्रकृति है दैवी प्रकृति। तो ये दैवी प्रकृति के नीचे कार्य करता है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता। तो पहला हमने देखा था महात्मा जो है, पहला लक्षण उसका देखा था कि वो दैवी प्रकृति में स्थित होता है, वो उसका पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण अभी यहां पे बताया गया है कि वो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, अपना ध्यान जो है केवल कृष्ण पे ही लगाता है, वो उसका दूसरा लक्षण है। क्योंकि वह भली बात ही जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि यहां पे बताया कि ज्ञातवा भूतादिम अव्ययम, तो भगवान जो है, कृष्ण भगवान जो है वो जो है अविनाशी है और वो सभी सृष्टि का स्रोत है, उद्गम है वो। शुद्ध भक्तों कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते, इसलिए यहां पे बताया गया कि भजन्ति अनन्य मनसो। क्योंकि ये जो शुद्ध भक्त है वो विष्णु रूप की तरफ भी आकर्षित नहीं होते। तो कृष्ण का जो हम यहाँ पे रूप जो देख रहे हैं, ये मंदिर में जो रूप देख रहे हैं वो कौन सा रूप है? एक द्विभुज रूप है ना। तो ये द्विभुज रूप जो है, यानी दो भुजाओं वाला, तो ये दो भुजाओं वाला रूप है, इसलिए ये कृष्ण जो है दो भुजाओं वाले यहाँ पे खड़े हैं। ऐसे नहीं कि चतुर्भुज वाले भी है, लेकिन ये अवतार, ये कृष्ण जो है इनको अवतारी बताया जाता है, और ये अवतारी कृष्ण जो है इनसे फिर बाकी अवतार आते हैं, फिर जो चतुर्भुज वाले जो विष्णु जो है ये इनके अवतार हैं। तो जो भजंती अनन्य मनसो, जो कृष्ण भगवान की जो भजन में लगे हैं, जो उनका ध्यान में लगे हैं, वो व्यक्ति चतुर्भुज रूप की तरफ भी आकर्षित नहीं होता, केवल और केवल कृष्ण भगवान ही चाहिए उनको बस। इसलिए भजंती अनन्य मनसो, वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप में आकृष्ट होते हैं, नहीं वे देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं, बहुत सारे लोग इस भौतिक संसार में हम देखते हैं किसी न किसी देवता की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं, है ना, किसी न किसी जो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है या कोई एक्टर है या कोई प्लेयर है उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, या उनकी पूजा करते हैं, या कोई राजनीतिक पॉलिटिशियन है उसकी पूजा करते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यहां पे बताया कि भजन्ति अनन्य मनसो, तो ये जो महात्मा है ये महात्मा केवल कृष्ण के ही, कृष्ण का ही ध्यान करता है और उनकी ही आराधना करता है बस। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचलित सेवा में लगे रहते हैं। तो यहां पे इस श्लोक में 9वें अध्याय का जो ये भगवत गीता का श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही विशेष श्लोक है। क्यों विशेष है मालूम है? तो भगवत गीता में कितने श्लोक है कौन बताएगा? कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। अगर 700 को हम बराबर बीच में विभाजित करेंगे तो क्या संख्या आएगी? 350, बराबर ना? तो भगवत गीता के 350 बराबर ना? लेकिन बीच में कुछ आंकड़ा नहीं आएगा। लेकिन जो है यहाँ पे जो बताया गया है कि 300 जो, तो भगवत गीता के दो श्लोक जो है वो बीच वाले दो श्लोक, तो बराबर बीच वाले श्लोक यहाँ पे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं आज। तो ये भगवत गीता का क्या है? मध्य। तो बराबर मध्य में हम ये श्लोक जो है, ये वाला श्लोक और इसके आगे वाला श्लोक, ये बराबर मध्य में है। तो इसलिए श्लोक जो है बहुत ही विशेष है। तो कृष्ण भगवान इस भगवत गीता के मध्य में किसको रख रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये आज हम देखने वाले, इसलिए विशेष है। और इस मध्य में कृष्ण भगवान महात्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन वो व्यक्ति महात्मा जो है, वह महात्मा कौन है? तो ऐसे ही भगवान सातवें अध्याय में भी महात्मा के बारे में चर्चा करते हैं। उसमें बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि जो व्यक्ति वासुदेव सर्वमिति, जो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वासुदेव भगवान ही सब कुछ है, वो व्यक्ति को, उसको भगवान क्या बोल रहे हैं? स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा जो है बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे अब जो जीवों में एक हाथ आपको ये महात्मा मिली जो, और ऐसे भी ऐसे जीवों में भी ऐसे बहुत सारे लोग जो है आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, है ना, जो आध्यात्मिक मार्ग में जो जिनको परफेक्शन प्राप्त करना है उस पे चल रहे हैं। तो ऐसे महात्मा जो है, जो मुझे जानना चाहते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है। वासुदेवम सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जो है ये सब कुछ है, ऐसे जानने वाले बहुत दुर्लभ लोग हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ऐसे नहीं कि जो व्यक्ति पूरा ज्ञान प्राप्त किया है वासुदेवम सर्वमिति, केवल वही महात्मा है, ऐसे नहीं बोल रहे। तो वो बता रहे कि उसके पहले वाले श्लोक है, 7वें अध्याय में पहले वाले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, बहुत ही सुंदर है ये, आप सुनिए ध्यान देके। तो बोलते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरे मंदिर में आते हैं, ऐसे बोल रहे वो। तो कौन से है वो? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। आर्तो यानी जो बहुत ही दुख में है, पीड़ा में है, तो वो भगवान के पास जाते हैं। और दूसरा बताया है कि दूसरी व्यक्ति कौन आता है कृष्ण भगवान के मंदिर में या विष्णु के मंदिर में? अर्थार्थी, जिसको धन प्राप्ति की इच्छा है, है ना। तो बहुत सारे लोग देखते हैं, हम बालाजी मंदिर जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो अर्थार्थी, क्योंकि उनको धन प्राप्त करना है। और तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी जिसको जानना है कि ये भक्ति मार्ग क्या है, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, मैं सब कुछ, सबके साथ मेरा अच्छा व्यवहार है लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो ये जानना चाहते हैं वो, इसलिए जिज्ञासु। और चौथा है ज्ञानी, यानी जो पूरी ज्ञान में है, जिसको मालूम है भूतादिम अव्ययम कि कृष्ण भगवान ही स्रोत है, तो ये ज्ञान वाला व्यक्ति दूसरे मंदिर में नहीं जाएगा, वो केवल यही पे आएगा, क्योंकि उसको मालूम है सबके स्रोत कौन है, सबके स्रोत कौन है, कृष्ण है, वो जानता है, वो ज्ञानी यहां पे आएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि अभी आप बोलेंगी तो अभी आप बोलेंगे कि मैंने जो यहां पे जो चार लोग बताए आपको, अर्थो यानी जो दुख में है, पीड़ा में है, और जो अर्थार्थी जिसको धन प्राप्त करना है, या जिज्ञासु या ज्ञानी है, तो ये ऐसे नहीं कि सब लोग यही पे आते हैं, वो दूसरे मंदिर में भी जाते हैं। लेकिन कृष्ण उस श्लोक में बोल रहे हैं कि ये लोग जो यहां पे आते हैं, ये चार उद्देश्य से जो लोग यहां पे आते हैं, वो उनके अंदर सुकृति है, उन्होंने पुण्य पुण्य कमाया है उन्होंने। अगर उनके पास पुण्य नहीं रहेगा तो वो जो कृष्ण भगवान का जो मंदिर है या विष्णु का जो मंदिर है उसकी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे वो। यानी आप यहां पे आए हैं तो आप सब पुण्यवान हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बराबर ना, तो आप सब पुण्यवान हैं। तो ये अर्थो जो दुख पीड़ा में है, और जो अर्थार्थी जिसको धन की प्राप्ति है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, ये चार प्रकार के लोग जो आ रहे हैं मंदिर में, तो ये पुण्यात्मा है सब। और ये सुकृति जो है, ये सुकृति जिसके बारे में चर्चा की गई है, ये सुकृति जो है ये कोई भौतिक सुकृति नहीं बताई गई है, ये सुकृति कौन सी बताई गई है, आध्यात्मिक स्तर की सुकृति बताई गई। तो उस प्रकार से उसकी उसके ही कारण वो लोग यहां पे आते हैं। और इतना ही नहीं, ये सब लोग, क्योंकि ये लोग इनके पास इतना ज्ञान नहीं है, एक तो है ज्ञानी वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, उसको महात्मा बताया गया है। लेकिन जो व्यक्ति जिसको भगवान के बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं है, वो व्यक्ति भी यहां पे आ रहा है, तो उसको भी भगवान महात्मा बोल रहे हैं। उदारह सर्व एवेते, भगवान बोल रहे कि वो व्यक्ति भी क्या बोल रहे हैं, उदार है, वो व्यक्ति भी महात्मा है। यानी आपको भी कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, आप यहां पे जो बैठे हैं आप सब महात्मा है, तो ऐसे बोल रहे कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार से ये महात्मा जो है, तो महात्मा के विरुद्ध हम क्या बोल सकते हैं, तो महात्मा का एक सुंदर वर्णन एक श्लोक में आता है, उसमें बताया गया कि जो महात्मा जो है उसकी क्या वृत्ति रहती है, उसका दृष्टिकोण कैसा रहता है, उसकी सोच क्या रहती है, वो महात्मा जो है इसके बारे में एक सुंदर श्लोक में वर्णन आता है। उसमें बताया गया कि अयम निजह परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अपने श्लोक पढ़ा है वसुदैव कुटुंबकम, ये सुना है आपने, खाली आखिरी लाइन सुनी होगी आपने बहुत जगह पे, वसुदैव कुटुंबकम। तो क्या अर्थ है उसका, वसुदैव कुटुंबकम का, हा हा वसुदैव कुटुंब, हाँ वो तो है, लेकिन ये पूरा जो सृष्टि जो है ये वसुदेव जी का, जो भगवान है कृष्ण उनका कुटुंब है ये, है ना, उनका परिवार है ये। तो इसमें बताया गया कि अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि अयम निज ये मेरा है, परो वेत्ति ये दूसरे का है, ये चेतना वाले लोग जो है क्या बताया गया है, गणना लघु चेतसाम, उसकी चेतना जो है बहुत ही लघु रहती है, छोटी चेतना रहती है उसकी। लेकिन जो महात्मा जो है, वो महात्मा का वर्णन क्या बताया गया है, उदार चरिता नाम तू, यानी उसका जो चेतना, उसकी जो चेतना जो रहती है वो कैसी रहती है, उदार, यानी सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान के होने के कारण सभी के लिए मैं जिम्मेदार हूं, ये उसकी चेतना रहती है। उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, उसका परिवार केवल घर में रहने वाले तीन या चार लोग नहीं रहते, या दस लोगों का परिवार नहीं रहता उसका, उसका परिवार कितना रहता है, पूरा परिवार, पूरी दुनिया जो है ये मेरा परिवार है, तो ये उदार व्यक्ति के लक्षण रहते हैं, बराबर ना। तो अभी हम जैसे हमने चर्चा की कि आप सब महात्मा है क्योंकि आप कृष्ण भगवान के मंदिर में आए हैं, लेकिन अभी हमने वो पहली सीढ़ी चढ़ी है महात्मा के स्तर पे पहुंचने के लिए। जो सीढ़ी की पहली जो है पहली सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक पहुंचना थोड़ा दूर है ना, थोड़ा दूर है, वहां तक हमको जाना है। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं जो बच्चा रहता है, एक छोटा बच्चा रहता है, तो बच्चा जो है वो बच्चे को आप देखेंगे उसको सब चीज चाहिए। जो भी चीज वो देखता है वो क्या करता है, ये मुझे चाहिए। आप उसको मोबाइल दिखाओ, आप उसको चश्मा दिखाओ, वो सब ले लेगा, सब ले लेगा। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये चाहिए मुझे। चाबी दिखाओ, चाबी भी ले लेगा। कुछ खाने की चीज दिखाओ, वो सब मुझे चाहिए, सब मुझे चाहिए। पर मेरा 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 मेरा। तो बच्चे की जो चेतना रहती है वो कैसी रहती है, बहुत लघु रहती है। वो सोचता नहीं सब मुझे मुझे चाहिए खाने के लिए। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होते जाता है तो उसकी चेतना का क्या होता है, विकास होते जाता है। तो फिर वो देखता है, अरे मैं अकेला नहीं हूं, मुझे प्रेम करने वाले मेरे माता पिता भी है यहाँ पे, बराबर ना, मेरे माता पिता भी है। तो वो देखता है कि तो माता पिता उसको लॉलीपॉप देंगे तो पहले क्या करेगा, वो पहले माँ को देगा या पिता को देगा, पहले आप लीजिए। तो पिता तो पूरा लेने वाले नहीं है, थोड़ा सा उसको चाखेंगे और उसको वापस दे देंगे। तो इस प्रकार से फिर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर देखेगा, अरे मेरे भाई है, मेरी बहन है, फिर देखेगा मेरा मित्र परिवार है। फिर और बड़ा हो जाएगा तो उसका चेतना का और विकास होगा। फिर देखेगा, अरे मेरा समाज भी है। फिर और थोड़ा विकसित हो जाएगा तो देखेगा, अरे मेरा केवल समाज नहीं, मेरा देश भी है यहां पे। तो इस प्रकार से उसकी चेतना का विकास होते जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर अध्यात्म में नहीं है, आप समझ रहे ना, अगर वो व्यक्ति उसके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, उसका जो चेतना का जो स्तर है, जो विकास है, वो केवल शरीर के स्तर पे ही रहेगा, शरीर के स्तर पे ही रहेगा। वो सोचेगा कि केवल मेरा जो प्रेम है या मेरी जो भावना है वो केवल मेरे योनि के जो लोग हैं, मनुष्य योनि के जो लोग हैं, केवल उनके साथ ही आदान प्रदान करूंगा। वो नहीं सोचेगा कि अरे बाकी योनि में जो जीव है वो भी कृष्ण भगवान के ही पुत्र है, है ना। तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता, भगवान बोलते हैं कि मैं सब अहम बीज प्रदापिता, यानी मैं सब जितने भी जीव है, ममे वामशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हर एक जीव ये कौन है, मेरा अंश है, वो मेरे 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 वो मेरे बच्चे हैं, वो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए जो शरीर के स्तर पे है, वो शरीर पे स्तर पे रहने वाली व्यक्ति जो है वो केवल अपने ही मनुष्य के स्तर पे ही कार्य करेगी। लेकिन मनुष्य स्तर या मनुष्य के अलावा जो योनियां हैं उनको वो नहीं देखेगी कि वो भी कृष्ण भगवान के ही पुत्र है या उनके ही बच्चे हैं, ऐसे नहीं देखेगी। फिर वो व्यक्ति जो है मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन बाकी जीवों को क्या करेगी, वो उनको मारेगी, वो अपने जीवा जो है उसके समाधान के लिए बाकी जीवों की हत्या करेगी। तो यहां पे इसलिए वसुदैव कुटुंबकम जो है ये शब्द का अर्थ है कि इसमें सब आते हैं। तो ये उदार चरिता नाम तू, ये जो उदार व्यक्ति वाला जो महात्मा व्यक्ति है, ये सब लोगों को क्या देखता है, सब जीवों को क्या देखता है कि भगवान का अंश है ना, इसलिए वो उनके ही बच्चे, उनके ही पुत्र है, ऐसे समझता है। और सभी जीवों के साथ वो क्या करता है, अत्याचार नहीं करता या उनकी हिंसा नहीं करता वो। तो इस प्रकार से तो जो महात्मा जो है वो यहां पे बताया गया कि कैसे हमें हमारे चेतना का विकास करना है, महात्मा स्तर पे हमको उठना है। क्योंकि शारीरिक स्तर पे अगर कार्य करेंगे तो हम जितने भी हम संबंध बनाएंगे शारीरिक स्तर पे, वो संबंध क्या क्या होगा उसमें, उसमें केवल पीड़ा ही मिलेगी हमको, बराबर ना? क्योंकि ये शरीर के स्तर पे हम किससे भी प्रेम करेंगे, क्योंकि ये शरीर जो है, शरीर का शरीर कैसा है, अस्थाई है। शरीर अस्थाई होने के कारण उसमें हम जिससे भी प्रेम करेंगे या जो व्यक्ति से भी हम उसके उसकी उसकी सेवा करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो व्यक्ति जो है कभी ना कभी उस मृत्यु को प्राप्त होने वाली है। इसलिए वो क्या होगा, वो हमें दुख देगा, पीड़ा देगी हमें। इसलिए हमें आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पे आना है। जब हम कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना के हम जीवन जिएंगे, सबको हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबको मदद करेंगे, तो क्या होगा, तो हम वास्तविक में हम जो है आनंद का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से तो परीक्षित महाराज जो है श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात, उसमें बोल रहे हैं कि कैसे ये जो महात्मा जो है, ये महात्मा ये सभी इच्छाओं से मुक्त है, और इसी जो ऐसे ही लोगों से हमें जो है ये कृष्ण और कृष्ण जो लीला है या भगवद गीता है, भागवतम है, उसका पान हमें उनसे ही करना चाहिए, केवल वो व्यक्ति से ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से निवृत्त तर्शेर उपगीय मानात, तो ये निवृत्त तर्शेर, ये महात्मा लोग जो है, ये महात्मा लोग सभी मनोकामनाओं से मुक्त है, वो अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, तो इसलिए उनसे हमें सुनना है। तो इस प्रकार से तो आगे बताया गया कि महात्मानस्तु, तो यहां पे इस श्लोक में महात्मा के बारे में हमने चर्चा की, महात्मा कौन है, महात्मानस्तु, यहां पे जो तू शब्द जो बताया गया है, तो तू शब्द का अर्थ है लेकिन। तो यहां पे बताया गया कि ये जो ये श्लोक में वर्णन है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो जीवात्मा है, बहुत ही सौभाग्यशाली है, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग हैं जो सौभाग्य दुर्भाग्यशाली है, वो लोग कौन है, तो उसका वर्णन पहले दो इसके वाले पहले दो श्लोकों में किया है। तो उसमें बोलते हैं कि जो लोग मेरी उपेक्षा करते हैं या मेरा अस्वीकार करते हैं, वो लोगों को मूर्ख बताया गया है। अवजानंती माम भूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, कि जो व्यक्ति मुझे जानता नहीं कि मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूं, ये व्यक्ति जो जानती नहीं उसको मूढ़ा बताया गया है। तो इस प्रकार से तो इसलिए यहां पे सुंदर वर्णन है कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रिता। तो ये व्यक्ति को महात्मा क्यों बताया गया है, तो यहां पे बताया गया कि दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, क्योंकि इस व्यक्ति ने दैवी प्रकृति का उसने क्या किया है, सहारा लिया है। तो भगवान के बहुत सारी शक्तियां हैं, तो उसमें बताया कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समच्चाप्य दिखच्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तो भगवान जो है, कृष्ण भगवान जो है, केवल यहां पे कुछ कार्य नहीं कर रहे। आप अगर यहां पे उनका दर्शन लेंगे तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, वो मुरली बजा रहे हैं ना, बराबर ना, खाली खड़े होके मुरली बजा रहे हैं। लेकिन बाकी किसी दूसरे मंदिर में जाएंगे, देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हैं वो, बराबर ना। कोई हाथ में, किसके हाथ में त्रिशूल है, किसके हाथ में कुछ ना कुछ तो अस्त्र है, कोई ध्यान मुद्रा में बैठा है, तो कोई ना कुछ तो कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं, केवल मुरली बजा रहे हैं। तो बताया कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। तो कृष्ण भगवान जो है, उनको कोई भी कार्य करना है तो उनका कार्य तो केवल उनको वो मन में विचार लाना है, और उनकी शक्ति जो है वो सब कार्य कर देती है। तो इस प्रकार से तो भगवान की ऐसी अनेक शक्तियां हैं, और वो अनेक शक्तियों में तीन प्रधान शक्तियां हैं। तो उसमें बताया गया कि एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति और एक है तीसरी है तटस्थ शक्ति। तो पहली शक्ति कौन सी बताई मैंने? अंतरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति यानी भगवान जो है उनकी खुद की शक्ति है, वो खुद की शक्ति है। तो भगवान का जो धाम है, जो वैकुंठ गोलोक धाम जो है, और भगवान के जो भक्त है वहां पे, और वहां की हर एक वस्तु, वहां पे हर एक चीज जो है वो सब अंतरंगा शक्ति के उसके उसके अंडर आती है। और उसके अलावा ये जो भौतिक संसार हम देख रहे हैं, भूमिर अपवानोलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच, तो ये पांच तत्वों से जो बनाया वह जो संसार है, ये संसार क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है। क्योंकि हम इस संसार में देखते हैं हर एक वस्तु जो है ये पांच तत्वों से बनी गई है, पृथ्वी अग्नि आकाश वायु जल, है ना? तो ये पांच तत्वों से बनी गई है, इसलिए इसको बहिरंगा शक्ति बोली गई है। तो है तो भगवान की शक्ति लेकिन बहिरंगा शक्ति है। और तीसरी शक्ति जो है उसको तटस्थ शक्ति बोला गया है। तटस्थ शक्ति यानी उसमें सब जीव जो है, सब आत्माएं हैं, वो उस तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो तटस्थ, इसको जो शब्द इसका जो उपयोग किया गया है, तट, तट यानी क्या? तट पे, बराबर ना, तट पे होना। तो जो व्यक्ति तट पे है उसकी एक साइड में क्या है? पानी है, और दूसरे साइड में क्या है? जमीन है, बराबर ना? तो ऐसे ही है। तो हम जो जीव है, हम सभी जीव, तो हम सभी जीव जो है ये तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो हमको, हम एक तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति में जा सकते हैं, नहीं तो हम भगवान की बहिरंगा शक्ति में कार्य कर सकते हैं। तो हमें ये स्वतंत्रता दी गई है, तो फ्री विल बोलते हैं उसको, है ना? तो हर एक जीव को भगवान ने क्या किया है? फ्री विल, स्वतंत्रता दी गई है हर एक को, कि आपको यहां पे कृष्ण भगवान के मंदिर में आना है, या उस समय में आपको कोई दूसरा कार्य करना है, या कोई थिएटर में जाना है, या कोई पिकनिक करनी है, या कोई शॉपिंग करनी है, कुछ करना है, वो कार्य करना है, है ना? तो वो आपके हाथ में, फ्री विल, बराबर ना? तो वो फ्री विल जो है, इसलिए उसको तटस्थ बोला गया है, क्योंकि उसको वो स्वतंत्रता दी गई है। तो ये भगवान जो बोल रहे, यहां पे जो वर्णन किया है, दैवीं प्रकृति माश्रितः, तो ये महात्मा जो है, ये महात्मा क्या होते हैं? भगवान की जो दैवी प्रकृति है, उस दैवी प्रकृति में कार्य करते हैं। इसके अलावा सातवें अध्याय में भी भगवान बोल रहे हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया, इस बहिरंगा शक्ति को भगवान, वो बहिरंगा शक्ति है उसको भी दैवी शक्ति बोल रहे हैं। तो दोनों क्या है? दोनों दैवी है। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मम माया, ये मेरी शक्ति है, इसलिए वो दैवी शक्ति है, है ना? तो दोनों का कार्य जो है एक जैसा हो सकता है। जैसे जैसे कोई इंजीनियर है, इंजीनियर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करता है? जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोई एक उपकरण में वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ेगा तो क्या होगा? उस उपकरण से सब चीज ठंडी हो जाएगी। और वही इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई दूसरे उपकरण में छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सब कुछ गर्म हो जाएगा। लेकिन है तो एक ही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो अलग अलग कार्य कर रही है, है ना? तो भगवान की भी जो शक्ति है वो शक्ति भी वैसे ही कार्य करती है। भगवान की ही शक्ति है वो, लेकिन वो अलग अलग कार्य करती है। जैसे हमारे इस्कॉन के एक बहुत बड़े सन्यासी है, तो वो सन्यासी जो विदेश के है, वो सन्यासी जब छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो उनकी घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत गरीबी थी। तो वो क्या करते थे? वो खुद जाके जो अखबार है, न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर जाके बांटते थे घरों घरों में जाके। तो ऐसी वो हर दिन की तरह जो घर में गए थे, वो घर में न्यूज़पेपर देने के लिए गए, और उस घर में उनका बहुत बड़ा कुत्ता था, और अभी तक जब भी जाते थे वो, कुत्ते को देखते नहीं थे, वो कुत्ता बांधा रहता था, किधर तो अंदर रहता था वो। लेकिन उस दिन वो क्या हो गया, कुत्ता जो है वो छूट गया था, उसको बांधा नहीं देगा। और जैसे ही ये छोटे बच्चे, ये जो प्रभु जी थे, स्वामी जी थे हमारे, वो छोटे बच्चे थे, तो गए अखबार अंदर डालने के लिए, वो घर में गए, और जैसे ही वहां से रिटर्न आ रहे थे तो कुत्ते ने देखा ये बच्चे को, और जोर से उनकी तरफ भाग रहा है उनको पकड़ने के लिए। और इनको तो कुछ पता नहीं चल रहा, ये तो एकदम छोटे हैं, ये कुत्ता इतना बड़ा कुत्ता था, और जोर से भाग रहा है उनकी तरफ, अभी उनको पकड़ने वाला ही, उनके ऊपर छलांग लगाने वाला ही है। तभी पीछे से आवाज आता है टॉमी करके, है ना। तो उसका मालक जो है, उसका मालिक उसको बोलता है रुक जा, है ना, उसका नाम लेता है। जैसे ही नाम लेता है तो वो कुत्ता क्या होता है, उधर ही रुक जाता है, वो कुछ भी नहीं करता। तो वैसे ही तो ये भगवान की जो शक्ति है, ये शक्ति तो एक ही है, लेकिन ये कार्य भगवान की निर्देशन के अनुसार कार्य करती है, है ना। तो भगवान जैसे बोलते हैं वैसे कार्य करती। अगर जब देखते हैं कि ये भक्त जो है मेरी तरफ आने के लिए प्रयास कर रहा है, ये व्यक्ति मेरी तरफ आने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसके रास्ते में, उसके भक्ति मार्ग में वो जो माया है, माया देवी जो है, उसमें रास्ते में कुछ बिगाड़ नहीं करती, है ना, उसको रास्ता खुला कर देती है भगवान के पास जाने के लिए। तो इस प्रकार उसको सुविधाएं प्रदान करती है जिससे कि वो जल्दी भगवान के पास चला जाए, है ना। तो जैसे कोई एयरपोर्ट में अगर कोई दूसरे देश से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वहां पे चेकिंग होती है ना, कि वो कोई दूसरे देश से अगर अपने देश में आ रहा है तो पूरी चेकिंग होती है वहां पे, क्या आ रहा है, क्या लेके जा रहा है, कैसा है, इसके पास पूरा है क्या, पासपोर्ट वीजा सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब कुछ कागज सब ठीक है कि नहीं, इसके पास देखे जाते। तो उसी प्रकार से ये माया देवी जो है भगवान की, ये जो गुणमयी जो माया देवी है, बहिरंगा शक्ति है, वो भी क्या करती है, वो भी सब टेस्ट करती है हमें, कि ये व्यक्ति भगवान के धाम जा रहा है, वैकुंठ जाने से पहले ये उसके लिए तैयार है कि नहीं, ये इसके पास सब कुछ है कि नहीं, भक्ति में ये इसने पूरी प्रगति की है कि नहीं, इसकी पूरी इच्छा है कि नहीं, या अभी तक इसके अंदर, इसके मन में अंदर अभी तक कोई भोग करने की इच्छा है, बची है, ये सब टेस्ट करती है वो माया देवी। और जब हम उसके उसके जो टेस्ट में अगर हम सफल हो जाएंगे तो वो हमें आगे भेजेगी, चलो आप अभी जा सकते हैं भगवान के धाम, आप अभी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से, तो इसलिए ये दैवी प्रकृति माश्रिता जो यहाँ पे बताया गया है, तो ये भगवान की जो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, है ना। तो ये बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, तो एक प्रभु जी हमारे बता रहे थे कि ये जो दैवी प्रकृति और ये बहिरंगा शक्ति है और ये अंतरंगा शक्ति है, ये एक है मासी और एक है माँ की तरह, है ना। तो अगर आप मासी के घर में जाएंगे तो आप कितना दिन वहां पे रह सकते हैं, मासी तो प्रेम करती है ना, मासी प्रेम करती है, लेकिन कितना दिन प्रेम करेगी वो आपसे, ज्यादा दिन प्रेम नहीं करेगी आपसे, कुछ दिन आएंगे आप, आपको अच्छे से खिलाएगी, आपसे प्रेम करेंगी, लेकिन जैसे ज्यादा दिन रहेंगे आप उधर, तो बोलेगी आप अभी कब निकल रहा है ये व्यक्ति, कब अपने घर वापस जा रहा है। लेकिन माँ जो है, माँ कभी ऐसा सोचती है क्या, माँ ऐसा नहीं सोचेगी, माँ आप कितने भी दिन वहां पे रहेंगे तो माँ आपसे प्रेम ही करेगी आप, और माँ आपको जो है आपकी सेवा करती रहेगी। तो उसी प्रकार से ये बहिरंगा शक्ति जो है एक मासी की तरह है, और ये अंतरंगा शक्ति जो है ये कैसी है, एक माँ की तरह है अपनी। तो यहाँ पे हमें प्रेरणा दी जा रही है कि हमको भी इस अंतरंगा शक्ति में आना है, भगवान की जो दैवी प्रकृति है उसका आश्रय लेना है। तो इस प्रकार से यहां पे बताया है कि कैसे, क्यों ये व्यक्ति जो है, क्यों ये व्यक्ति दैवी प्रकृति में है, ये महात्मा जो है ये दैवी प्रकृति में क्यों है। तो यहां पे आगे बताया गया है, भजंती अनन्य मनसो, क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, भजंती अनन्य मनसो, दैवी प्रकृति में है क्योंकि भगवान का पूरा ये अविचलित मन से वो उनकी जो है वो सेवा कर रहा है, इसलिए ये दैवी प्रकृति में है। तो इस प्रकार से, तो ये मन जो है, भजंती अनन्य मनसो, तो यहां पे बताया गया है कि भजन्ति अनन्य मनसो, क्योंकि ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, शुद्ध भक्त जो है कृष्ण के अन्य स्वरूप तथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी कभी आकृष्ट नहीं होता, बराबर ना? तो बहुत ही जरूरी है ये, बहुत ही समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर भगवान का चतुर्भुज रूप है और भगवान का द्विभुज रूप है, दो भुजा वाला रूप है, तो आप प्रेम किससे करेंगे? आप प्रेम का आदान प्रदान किससे कर सकते हैं? हम दो भुज वाले से, जिसके दो भुजाएं हैं। चतुर्भुज रूप वाला जो है भगवान जो है, उनके प्रति क्या होगा आपका? उनके प्रति आदर रहेगा आपका, है ना, ऐश्वर्य भाव रहेगा। अरे ये भगवान है, चतुर्भुज रूप में अगर प्रकट हो जाएंगे तो उनका ऐश्वर्य भाव रहेगा। लेकिन प्रेम का आदान प्रदान जो है वो तो द्विभुज रूप से ही हो सकता है। तो इसलिए यहां पे बताया कि भजन्ति अनन्य मनुष्यो, कि ये जो व्यक्ति, ये जो महात्मा है, ये मेरा अनन्य भाव से भजन करता है ये मेरा। तो इसलिए भजन्ति अनन्य मनुष्यो। तो मनसो, मन जो है, ये मन आध्यात्मिक मार्ग में हमें मन का नियंत्रण जो है ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए छठवें अध्याय में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक बोलते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम मंदमोक्षयो, बंधाय विषयासंगो निर्मुक्त निर्विषयम मन। तो उसमें बताया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम मंदमोक्षयो, कि मनुष्य के लिए उसका मन जो है वो मन इस भौतिक संसार में उसके बंधन का कारण बनता है, और वही मन उसके भौतिक संसार से मुक्त होने का भी कारण बन सकता है। तो ये डिपेंड होता है ना? अगर वो मन अपने नियंत्रण में है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, तो इस मन से हमको आत्मा का उद्धार करना है। ऐसे नहीं कि इस मन से हमें उसका पतन करना है इस आत्मा का। तो ये मन जो है, अगर ये मन के ऊपर हमने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है तो क्या होगा? वो मन जो है हमारा बंधु है, बंधु यानी मित्र है, है ना, सुहृद है हमारा। अगर वो मन अपने नियंत्रण में नहीं है तो क्या होगा? वो मन जो है, वो मन अपना शत्रु है, ऐसे बताया गया। तो इसलिए ये मन के ऊपर नियंत्रण जो है, ये नियंत्रण बहुत ही जरूरी है आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर, क्योंकि नहीं तो भजन्ति अनन्य मनसो नहीं होगा। अनन्य अविचलित मन से भगवान की हम सेवा नहीं कर पाएंगे, उनका नाम नहीं ले पाएंगे। नहीं तो यहां पे मंदिर में भी आने के बाद हमारा मन सब जगह भटक रहा है, सब जगह भटक रहा है, बराबर। अभी बैठे तो है, शरीर से हम यहां पे बैठे हैं, लेकिन मन तो बहुत जगह भटक रहा है भाई, है ना। प्रसाद कब होगा, या दोपहर में खाने में क्या होगा, अभी हमारा नेक्स्ट टूर कब जाएगा, है ना, इसके बाद घर पे जाके मैं क्या करूंगा, किससे मिलना है मुझे, किसको इंपॉर्टेंट फोन करना है, सब कुछ चल रहा है मन में, चल रहा है मेरी चप्पल है कि नहीं उधर सुरक्षित, बराबर ना। सब कुछ मन तो भटक रहा है, मन तो भटक रहा है, भटक रहा है। तो इस प्रकार से, तो ये अनन्य मन से जो भक्ति है वो नहीं होगी अगर मन नियंत्रण में नहीं होगा। तो इसलिए भजन्ति अनन्य मनसो। तो ये व्यक्ति क्यों कर पा रहा है भजन्ति, भगवान का जो भजन जो है अनन्य मन से क्यों कर पा रहा है? तो इसमें बताया गया आगे, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि वो व्यक्ति जो महात्मा है, वो महात्मा जानता है कि ये कृष्ण भगवान जो है ये भूतादिम अव्ययम, कि ये भगवान जो है ये सृष्टि का उद्गम स्थान है। भूतादिम सभी सभी वस्तुओं के, सभी जीवों के स्रोत जो है, ये स्रोत कौन है? कृष्ण है, ये जानता है व्यक्ति। इसलिए वो उनकी अनन्य मन से भक्ति कर पा रहा है, नहीं तो नहीं होगा अनन्य मन से भक्ति, ठीक है ना। तो बताया गया कि सभी जीवों के स्रोत तो कृष्ण है ही, लेकिन इस सृष्टि के जो निर्माता कौन है? कौन है सृष्टि के निर्माता? नहीं, जिसको ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया है। इसलिए यहां पे भूतादिम यानी ब्रह्मा जी के भी स्रोत जो है वो कौन है, कृष्ण। तो ये महात्मा जो है, ये महात्मा जानता है कि ये कृष्ण भगवान जो है ये ब्रह्मा जी के भी स्रोत है। इसलिए भगवान का एक नाम, कृष्ण का एक नाम क्या है मालूम है, केशव, केशव। तो उसका अर्थ है कह यानी ब्रह्मा जी, ईश यानी शिव जी, और व यानी वपु। तो जिनके शरीर में, वपु यानी शरीर, तो जिनके शरीर में ब्रह्मा जी और शिव जी निवास करते हैं इसलिए केशव ना? तो ये ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनके शरीर में निवास करते हैं, उनको भी उस स्थान, उनका स्थान जो है उनके शरीर में ही, इसलिए केशव। तो भूतादिम, इसलिए वहां पे भूतादिम बोला गया। और फिर आगे बताया कि अव्ययम, तो ये कृष्ण भगवान जो है उनका एक लक्षण क्या है, अव्ययम। अव्ययम यानी, अव्ययम यानी अविनाशी, अविनाशी है। जब हमें पता चलेगा कि, जब हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति से, ये व्यक्ति में मैं पूरा उसके साथ में प्रेम कर रहा हूं, तो ये व्यक्ति मेरे साथ में हमेशा के लिए नहीं है, तो हमें डर पैदा रहेगा। अरे ये व्यक्ति के ऊपर में मेरा पैसा, मेरा मेरा जो धन है, मेरा जो समय है, ये व्यक्ति के ऊपर खर्चा क्यों करूं मैं, अगर ये व्यक्ति हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं है तो। बराबर ना। अगर किसको मालूम है कि ये मेरा घर जो है, जिस घर में मैं रह रहा हूं वो घर मेरा भाड़े का है, तो उसको कोई प्रेम से सजाएगा क्या, नहीं सजाएगा उसका उसको प्रेम से। लेकिन उसको जब पता चला है, उसको जब वो घर उसका खुद का घर है, उसको मालूम है कि ये मेरा परमानेंट घर है, तो बहुत प्रेम से सजाएगा उसको, हर दिन उसको झाड़ू मारेगा, उसको देखेगा, पोछेगा, है ना, सब कुछ उसको देखभाल करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा परमानेंट घर है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहां पे बताया कि भगवान जो है, ये भगवान कैसे है, अव्ययम, अविनाशी है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम प्रेम स्थापित करेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम संबंध बनाएंगे, तो वो हमेशा के लिए हमारे बैंक के अकाउंट में आ जाएगा, है ना। तो वो संबंध, वो रिश्ता जो है, वो रिश्ता कभी नाश नहीं होगा, वो संबंध हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन इस भौतिक संसार में हम जिससे भी संबंध बनाएंगे, जिसके साथ भी प्रेम करेंगे, जिसके साथ भी हम पैसा खर्चा करेंगे, वो व्यक्ति क्या होने वाली है, मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, उसका क्षय होने वाला है, उसका विनाश होने वाला है। इसलिए हमें बताया जाता है कि हमें इस जीवन में, हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो इस मनुष्य जीवन में हमें भगवान के साथ संबंध बनाना सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि वो संबंध हमारा कैसा रहेगा, अविनाशी, अव्ययम रहेगा। और फिर मृत्यु के समय हमें चिंता नहीं रहेगी, हमें डर सताएगा नहीं हमें, बराबर ना। नहीं तो फिर हमें डर सताते रहेगा, चिंता रहेगी, अरे ये क्योंकि ये शरीर से, क्योंकि ये शरीर के साथ जो भी है वो सब नाश होगा। लेकिन अगर कृष्ण के साथ संबंध बनाएंगे, क्योंकि मालूम है कृष्ण तो अव्यय है, है ना, अविनाशी है, तो उनके साथ संबंध, उसका कभी विनाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से, तो इसलिए ज्ञातवा भूतादिम अव्यय, तो इसलिए हमें कृष्ण भगवान की सेवा करनी है, और उनके साथ ये जो संबंध जो है, संबंध बनाना है। तो ये महात्मा जो है, ये महात्मा बनने का अवसर जो है, ये हम सभी को है। यहाँ पे जो बैठे हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेरे मंदिर में आने वाला व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति उदार चरित वाला है, ये व्यक्ति महात्मा है। लेकिन हमें अभी उस, जो अभी महात्मा के हम जो स्तर पे है, वो स्तर से और भी ऊपर उठना है ना, और उनसे हम जानना है कि ये कृष्ण भगवान कौन है, और उनके साथ मुझे संबंध बनाना है। तो संबंध बनाने का जो प्रक्रिया है, तो ये बहुत ही भक्ति मार्ग जो है, जो चैतन्य महाप्रभु का आप दर्शन लेंगे, अभी यहाँ पे पट खुलेंगे अभी थोड़ी समय में, एक दो मिनट में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन आप लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताया जाता है कि हर एक युग में प्रकट होते हैं वो, तो भगवान जो है संभवामी युगे युगे, तो हर एक युग में प्रकट हो रहे हैं, तो इस युग में भी वो प्रकट हुए हैं। तो द्वापर के अंत में स्वयं कृष्ण भगवान आए थे और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, और उन्हें उन्होंने जो मार्ग दिया है हमको उनको प्राप्त करने का, उनके धाम में जाने का, वो है भगवान के नाम का जप। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने घरों में, ऐसे नहीं कि मंदिर मंदिर ही जाना चाहिए हमको, हमारे घर में भी रह के हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान का नाम जप करके हम पूरी तरह से हम महात्मा बन सकते हैं। तो इस प्रकार से तो आज हमने चर्चा की कि ये महात्मा कौन है ना? तो आज के दिन ये भगवद गीता के आधार पे हमने चर्चा की, तो किसको हमने किसको हमें महात्मा करके स्वीकार भी करना चाहिए, तो ये भगवद गीता क्या बताती है, तो ये हमने आज सीखा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय।
बहुत बहुत